वो जानता है क्या उचित है। कर्म करो, फल की अपेक्षा ना करो। निष्काम कर्मयोग। प्रश्न ये नहीं कि कितने आदमी आए, प्रश्न ये है कितने समझदार लोग आए। भीड़ से क्या फायदा। लेकिन पहले से एक बात की मैं क्षमा मांग लूं कि मेरी हिंदी शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि करीब 1985 के बाद पहली बार मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो लेकिन मैं काशी में पढ़ा था और बीएससी तक हिंदी भाषा में परीक्षाएं दी, तो उस समय तो हिंदी काफी अच्छी बोल लेता था मैं। तभी हमारी हिंदी ठीक है ना, हाँ 2-3 बार बोल दूंगा तो फिर वो ठीक हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि पहले कम लोग रहे। अगर आप लोगों की वो जो उत्साह बढ़ाने का वजह से शायद बाद में मैं हजारों की भीड़ में हिंदी बोलूं, क्या मालूम। ओके, जय श्री गुरु की आज्ञा। तो जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। तो यहां मैं जब पहले आया था तो मैं जरा देख रहा था कि यहां क्या क्या लिखा हुआ है, यहां का वातावरण कैसा है। तो सबसे पहले जो हमको बहुत अच्छा लगा वो ये है कि इस भवन का नाम सनातन धर्म भवन है। शायद वो कहते ना, निकटता होने से खूबियां खत्म हो जाती हैं। क्या कहते हैं, घर की मुर्गी साग बराबर। तो चूंकि हम लोग रोज ये सनातन धर्म भवन सुनते सुनते उस सनातन धर्म के बारे में सब कुछ भूल गए, हम लोग केवल नाम याद रह गया। तो सनातन धर्म के बारे में पहले 3 बातें हम हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि मैं जब भी कुछ बोलता हूं, जहां भी कुछ बोलता हूं, सनातन धर्म के बारे में ही बोलता हूं। और ये सनातन धर्म संघ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा काम किया है। शायद कई लोगों को मालूम नहीं, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के लोगों के त्याग से, बलिदान से हम लोगों को स्वतंत्रता मिला। लेकिन वास्तव में हम लोगों को स्वतंत्रता मिला सनातन धर्म संघ से। अरविंदो के बारे में आपने सुना ही होगा, महायोगी अरविंद, बहुत बड़े स्वातंत्र संग्रामी होने के साथ साथ वो बहुत बड़े योगी भी थे, बहुत बड़े योगी थे। खासतौर से विवेकानंद की आत्मा ने रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद के आत्मा ने जब वे जेल में थे उनका मार्गदर्शन किया। तो जेल में जब वो थे उनका मार्गदर्शन करने समय विवेकानंद के आत्मा ने अरबिंदो जी को जो संदेश दिया, वही संदेश यहां 3 दोहों में है। पहला दोहा है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। ये तो पहली बात हुई। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल के जमाने में भगवान जाने कौन सा जमाना है, जहां धर्म भी अधर्म के चोला पहन लिया है। कहते तो धर्म है, लेकिन उस सनातन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसे हम भूल गए। तो सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, अगर आज की भाषा में हम बोलना चाहें, वो है जीने की कला। हम लोग जीने की कला भूल गए। जहां देखो वहां मानसिक दबाव, जहां देखो वहां डर, जहां देखो वहां एक संशय, पता नहीं कल क्या होगा। इसको मिटाने की कला सनातन धर्म। तो वास्तव में सनातन धर्म का मतलब हुआ, जिस पल तुमने जन्म लिया उस पल से मृत्यु तक जीने की कला। ये भूल गए हम लोग। हम लोगों को केवल इतना याद रहता है कि सुबह जरा पूजा कर लिया, आरती उतार ली, शाम को भी अगर समय मिल गया तो जरा भजन कर दिया, सत्संग में चले गए। हम लोगों ने धर्म को निभा दिया। ठीक है, वह धर्म है, इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है। निश्चित रूप से सुबह की पूजा, दीप जलाना, कलश स्थापित करना, मंत्र का जप करना, ये सब धर्म ही है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हम करते क्यों हैं? क्यों हम लोग दीपक जलाते हैं? क्यों हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं? ये भूल गए हम लोग। मतलब उस पूजा में जो जीने की कला है वह हम लोग भूल गए। इसी को यहां पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा। क्या कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि। ये सनातन धर्म की हानि ही तो है कि हम लोग जीने की कला भूल गए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। तुम इतना कह दो कि मुझको और कोई गति नहीं है, केवल मैं तुम्हारे ही शरण में हूं। तो वो क्या जवाब देते हैं उसका? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां मिथ्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम। तुम्हारी योग और क्षेम की जिम्मेदारी तो मेरी है, तुम कौन डरता है? डरने की क्या बात? लेकिन हम लोग डरते, पूजा करते हुए डरते। जो पूजा नहीं करते हैं वो तो खैर करते ही नहीं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मुंह से तो हम लोग ये बोल रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम। लेकिन हम लोगों का योग, हम लोगों का क्षेम, क्षेम मतलब जो हमारे पास है वो हमारे पास रहे, हम लोग उसको ना खोए। और योग मतलब जो नहीं है उसको प्राप्त करने की टेक्निक, विधा। अब जैसे हम कुछ पाना चाहते हैं नहीं पाए तो क्या करते हैं? हमें यानी योग भी नहीं है, नहीं पाए तो योग का मतलब समझ में आ रहा ना? योग का मतलब है जो हम पाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं पा पा रहे हैं। क्षेम जो है उसको नहीं खोना है। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम। तो अनन्य भाव से निरंतर मेरी याद कर, मुझको स्मरण कर। तुम्हारा योग और क्षेम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। यह विश्वास तो हम लोगों को है, लेकिन यह श्रद्धा हम लोगों को नहीं है। यह है धर्म की हानि। विश्वास अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज। विश्वास का मतलब यह है कि अगर आग जलाएंगे तो गर्मी आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अगर आग जलाया हमने तो गर्मी आएगी, उस गर्मी को हम लोग कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। सिगरेट जला सकते हैं और अपना शरीर भी उससे जल जाएगा धीरे धीरे। खाना पका सकते हैं तो तात्कालिक भूख मिटेगी। यज्ञ कर सकते हैं, अपनी भी उत्थार हो जाएगा, समाज का भी उत्थार हो जाएगा। तो तीनों चीज तो हमें मालूम है ना कि आज से दिया स्वाइज जलाया, सिगरेट सुल गया, क्या हुआ उससे? अपना तो स्वास्थ्य गया, जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को भी स्वास्थ्य गया। ये तो सभी जानते हैं। सिगरेट पैकेट के ऊपर तो साफ लिखा रहता है हाँ, इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ, ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, कृपया ना खरीदे। लेकिन उसका साहस तो देखो, को लिखता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हम लोग खरीद लेते हैं। तो आपका विश्वास में श्रद्धा नहीं है, इसको थोड़ा समझ लें आप, तो हर साधना आपकी सफल हो जाएगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण कि हम उस शिव पार्वती की पूजा करते हैं जो विश्वास और श्रद्धा का स्वरूप है। तो विश्वास का मतलब जरा धीरे धीरे मैं बताऊं, आप उसको ढंग से समझ लें। तो यहां लिखे हुए कई दोहों को हम आज से तत्काल उसका जो है लाभ पा सकते हैं। तत्काल अगरबत्ती आज जलाया तो उसका सुगंध कल थोड़ा ना आएगा, अभी आ जाएगा आपको। तो भगवान का नाम लिया और अभी आपका कष्ट निवारण नहीं हुआ तो दो गलतियां हैं, या तो भगवान के नाम में वो शक्ति नहीं है जो ऋषि महर्षियों ने कहा है, या फिर हम लोग कहीं गलत हैं। जाहिर है ऋषि मुनि गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उन लोगों के करोड़ों साल की तपस्या, ये अनेकों ऋषियों ने करोड़ों साल अनेकों युगों साधना करके ये ज्ञान हम लोगों को दिया है, इसलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन पता नहीं कितने साल से, इस युग की बात नहीं है ये। यहां जो सब लिखा हुआ ज्ञान है वो कलयुग का ज्ञान नहीं है, त्रेता युग का ज्ञान नहीं है, द्वापर युग का ज्ञान नहीं है, कृतयुग का ज्ञान नहीं है। पता नहीं कितने ऐसे युग आए और चले गए, इसलिए ये सनातन धर्म। और यह जो है उस सनातन धर्म का मूर्त रूप है, क्योंकि यहां हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए इस जगह बैठ के बोलना, मैं समझता हूं हमारे कई जन्मों का पुण्य का जो है फल है। तो वहां कृष्ण की मैं बात कर रहा था, जेल में महायोगी अरविंद, तब वो महायोगी अरविंद के नाम से नहीं जाने जाते थे, महान क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते थे। विदेशी जो हुकूमत थी वो डरती थी उनके नाम से, विदेशों को उनके बारे में लिखा जाता था सी द मोस्ट डेंजरस मैन। अगर भारत देश में कोई सबसे खतरनाक आदमी कोई है तो बस एक आदमी है, अरविंद। अगर इसको हम लोग खत्म कर दें तो सारा देश निर्वीर हो जाएगा। तो उन लोगों की कोशिश थी इस तरह की, तो उनको फंसाया गया एक मुकदमे में, एक साल तक मुकदमा चला। आप लोगों को तो मालूम है ना, उस जमाने में जब हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे तो कोई स्वतंत्र सेनानी अगर पकड़ा गया और उसके ऊपर क्रांति का मुकदमा चले, यानी राजद्रोह का मुकदमा, क्योंकि तब राजा तो विदेशी लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, तो उनके विरुद्ध ये लोग सब काम कर रहे थे, तो जो उनके विरुद्ध काम करे वह राजद्रोही, और राजद्रोही का एक ही शिक्षा है, एक ही दंड है, मृत्युदंड। तो सभी को मालूम था कि अरविंद जी को मृत्युदंड मिलेगा। उनके साथ 11 और साथी पकड़े गए थे, उन सब के ऊपर जो है करीबन 11 महीने जो है केस चला, केस चलता रहा, लोग जो है गवाही देते रहे, सारी गवाहियां कहती रही कि इन्होंने गलत काम किया है, राजद्रोह किया है, इन्होंने शासन के विरुद्ध आवाज उठाई है। उस समय वो गीता पढ़ते थे जेल में, प्राणायाम करते थे, उपनिषद करते थे, क्योंकि उनको तो मालूम हो गया अब तो खत्म होने ही है, तो जो समय बचा गीता पढ़ने उपनिषद पढ़ने। तो उस समय जब वो खाना खाने के लिए प्लेट, तो उस समय कौन जेल में देगा, एक कागज के टुकड़े में, न्यूज़पेपर के कागज के टुकड़े में एक दिन अरविंद जी को खाना दिया गया। तो वो खाना खा लिए, पेपर देखा उन्होंने, पेपर में गीता का एक वाक्य था, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, सब में जो भगवान कृष्ण को देख सके, सब में, छोटे में, बड़े में, जानवर में, इंसान में जो भगवान कृष्ण को देख सके, वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण को जो देख सके, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा जो है बड़े कठिनता से मिलते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, अभी तो हमारे पास कुछ महीने शेष हैं, फांसी तो मुझको लगनी ही है, तो क्यों ना मैं साधना कर लूं। तो उन्होंने कौन सी साधना किया, जौ परलोक यहां सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाय। तो जेल में वो क्या साधना कर सकते हैं, हवन सामग्री थोड़ा ना मिलेगा, गाय का घी थोड़ा ना मिलेगा हवन करने के लिए, संविधाएं थोड़ा ना मिलेगा। तो वहां पे उनको भगति मोरी पुराण श्रुति गाय, भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति यानी भगवान के ऊपर श्रद्धा, इस बात को, इस अंतर को आप अगर मन में पकड़ लेना तो इस क्षण से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। विश्वास और श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति में बदलता है। तो पहले तो विश्वास होना चाहिए कि ये मार्ग ठीक है। वास्तव में अगर भगवान का हम नाम लें, भगवान को हम निरंतर याद रखें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इस लोक में ही नहीं परलोक में भी, दोनों लोक में कल्याण हो जाएगा, दोनों लोक में हम निश्चिंतता पूर्वक जी सकते हैं। यह विश्वास की बात है। जब विश्वास आचरण में बदलता है ना, तो उसको श्रद्धा कहते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि सिगरेट पीने से हानि होती है, यह विश्वास तो है सबको, लेकिन वो आचरण में नहीं आया, इसका मतलब उस विश्वास के ऊपर श्रद्धा नहीं है। तो आज जो हम लोगों के पास नहीं है ना, वह है श्रद्धा का राहित्य। श्रद्धा नहीं है, आचरण में नहीं करते, बात तो बहुत कर लेते, लेकिन जहां आचरण में आना होता है तो बगल वाले क्या कहेंगे, अभी तक तो हम साधारण रूप से औरों की तरह जी रहे थे, अचानक हमने अपना वेशभूषा बदल दिया, जब बोलो तब जय श्री कृष्ण कहने लगे, तो लोग क्या कहेंगे। तो लोगों के ऊपर, लोगों के आलोचना के ऊपर, लोगों के कहने के ऊपर आप लोगों को ज्यादा आपके विश्वास कि नहीं, भगवान का नाम हम लेते हैं तो हमारा कल्याण होने के साथ, हमारा कुटुंब का कल्याण होने के साथ साथ विश्व का भी कल्याण हो जाएगा। ये दो बातें हम लोगों को याद रखनी है। जैसे मैं आग का उदाहरण दे रहा था, तो एक आग का उपयोग तो अपने नाश के लिए और आसपास के वातावरण के नाश के लिए सिगरेट चल जाते हैं, दूसरे तरफ हम आग जलाते हैं खाना पकाने के लिए, अपनी भूख मिटाते हैं, घर के आए अतिथि की भूख मिटाते हैं, तो वो हुआ तात्कालिक लाभ, फिर रात को भूख लगेगी, फिर दूसरे दिन भूख लगेगी, तो फिर आग जलाना होगा आपको, फिर खाना खिलाना होगा, है ना। तो यह भी विश्वास है हमको कि आज हम खाना पका रहे हैं, फिर कल आग जलाएंगे, तो फिर कल हम खाना पका सकते हैं, परसों हम खाना पका सकते हैं, और लोग आते रहेंगे तो अतिथि मर्यादा के अनुरूप मैं क्या कर सकता हूं, मैं खाना खिला सकता हूं उनको आग जला के। लेकिन एक और तरीका आग जलाने का है जिसको यज्ञ कहते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो स्विष्ट कामधु। कामधु मतलब आप अपने कामनाओं का दोहन करें, जैसे गाय के थनों से आप दूध दूहते हैं ना, तो कितना दूध दूहते हैं, एक बूंद दो बूंद नहीं ना, वो तो एक धार सा होता है। तो आप अपने जो इच्छाओं का धार बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको यज्ञ करना आया तो आप अपने हर कामना की पूर्ति कर सकते हैं। उस यज्ञ विद्या को हम लोग पूर्ण रूपेणा भूल गए, उस सनातन मार्ग को हम लोगों ने पूर्ण रूपेणा भूल गए, जिसको कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसके साथ तुम पैदा हुए हो। ये सनातन धर्म की खूबी ये थी कि बच्चे के जन्मने के पहले ही जो है संस्कार के रूप में ये यज्ञ विद्या सिखा दी जाती थी। षोड़श संस्कारों में गर्भाधान संस्कार, सीमंत संस्कार जो छठे सातवें महीने में किया जाता था, तो यज्ञ विद्या बच्चे को मां के पेट में ही सिखा दी जाती थी कि पहले इस तरह सीख लो। जैसे अभिमन्यु को मां के पेट में ही चक्रव्यूह का ज्ञान हो गया था, तो आजकल तो हम लोगों को ये विद्या ही भूल गए। जब मां गर्भवती होती है तो कुटुंब का हर सभ्य जो है ये कोशिश करना चाहिए कि उस 9 महीने में उसको जीवन जीने की संपूर्ण कथा बता दे, उसको पूर्ण कथा बता दे। पहले ऐसा होता था, पूरी भागवत यही कथा बताती है कि मां जब गर्भिणी होती है तो उसको जो है किस तरह का खाना खिलाना चाहिए। ये पूरा महाभागवत भागवत में है, लेकिन उस दृष्टिकोण से हम कहां पढ़ते हैं? उस दृष्टिकोण से पढ़ें तो आपको एक और विचित्र चीज उसमें समझ में आएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो है कि द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण शरीर त्याग दिया, लेकिन पृथ्वी को नहीं त्यागा। बात समझ में आई ना? हम लोग समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपना शरीर त्याग दिया, अब यहां नहीं है। तब कलयुग आया तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य। उनको फिर कलकि अवतार के रूप में आना है। वो आ चुके हैं। कब से आ चुके हैं? जब से उन्होंने शरीर त्यागा। आप भागवत पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इस दृष्टि से कभी आपने भागवत पढ़ा तो आपको कितना साहस मिलेगा, कितना धैर्य मिलेगा कि जिस अवतार के बारे में हम सोच रहे थे वो तो हमारे बीच में है, भागवत के रूप में, भागवत कथा के रूप में। और यह बात स्वयं श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा भागवत में। ऐसी बात नहीं कि हम लोगों ने कोई उसमें से क्या कहते हैं उसको, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके हमारे मनपसंद मतलब उसमें से निकाल लिया। नहीं, स्ट्रेट सीधा उद्धव जी से उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने, तो चूंकि कलयुग में श्रद्धा नहीं रहेगा, केवल पठन पाठन होता रहेगा, इसलिए मैं भागवत में अक्षर के रूप में आ गया हूं, मैं भागवत में ही प्रतिष्ठित हूं, आप जब चाहें हमें उपयोग कर सकते हैं जो उसको सीखना चाहे। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ महालक्ष्मी जी का बहुत निकट संबंध है, बहुत निकट संबंध है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। कल के अवतार 10वां अवतार है। तो श्री कृष्ण एक अलग मूर्ति होते हुए भी, एक अलग व्यक्तित्व होते हुए भी, वे हैं तो विष्णु के हैं अंश, और वे जब विष्णु के अंश हुए तो उनकी शक्ति महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के बिना विष्णु का कुछ नहीं कर सकते बेचारे विष्णु जी। महालक्ष्मी रहेगी तो कुछ कर सकेंगे, महालक्ष्मी नहीं रहेगी तो नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोग, हम लोग यह समझते हैं कि महालक्ष्मी का मतलब धन, महालक्ष्मी का मतलब धन भी होता है, लेकिन महालक्ष्मी का मतलब यह हुआ परिपालना शक्ति, राज्य करने की शक्ति। विष्णु राज्य करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, शिव लय करते हैं। तो विष्णु का काम क्या है? शासन चलाना, शासन व्यवस्था रखना। तो शासन व्यवस्था किसके बूते पे वे करते हैं? महालक्ष्मी के बूते पे। हम लोगों ने महालक्ष्मी का धन का रूप तो देखा है, लेकिन महालक्ष्मी का शासन संभालने का व्यवस्था हम लोगों ने भूल गया। इसको याद दिलाने का हमारा प्रथम उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है सनातन धर्म का मतलब जीवन जीने की कला। इसलिए आप सनातन धर्मी कब से हैं? मां के पेट में आने के पहले से ही हैं। मां के पेट में आने के पहले से ही भागवत कहता है कि वो जीवात्मा जो मां के पेट में आता है उसके पहले 3 महीने वो पिता के सर पे रहता है। हम लोगों ने भागवत पढ़ते ही नहीं। 3 तारीख से 10 तारीख तक मैं भागवत भी बताने वाला हूं। लोकेशन तो हमने स्थिर नहीं किया, लेकिन वो डेट हमने फिक्स कर लिया हैदराबाद में ही, 3 तारीख से 10 तारीख तक। तो वहां आपको यह बात कई बार लोग, मतलब क्या कहते हैं उसको, चिढ़ाते हैं हस्बैंड को, पति को, कि तुम क्या जानो पीड़ा, कभी तुमने अगर धोया हो तो पता हो बच्चे को। लेकिन भागवत कहता नहीं, पहले पिता ढोता है 3 महीने, उसके बाद वो मां के पेट में जाता है। तो यह दीक्षा, शासन व्यवस्था को सही करने की दीक्षा, ये यज्ञ है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत सिंपल यज्ञ है। तो ये सब का आधार मैं कहां से ला रहा हूं, महान क्रांतिकारी योगी अरविंद जब जेल में थे तो श्री कृष्ण ने उनसे जो कहा उसके आधार पे मैं ये सब बता रहा हूं। श्री कृष्ण ने कब उनका सामने आके कहा, जब उन्होंने एक गीता का एक श्लोक को पकड़ा, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, सब में वही वासुदेव है, वही अंतर्यामी भगवान है। जो इस सत्य को जानता हो ऐसा महात्मा तो बहुत दुर्लभ से मिलता है। तो जेल में स्थित अरविंद जी ने कहा, अब तो मुझको मरना ही है तो क्यों न मैं साधना कर लूं। तो उन्होंने प्राणायाम किया, जो जो साधनाएं उन्होंने किया, भागवत की संबंधी एक साधना जो यहां लिखी हुई है, कलयुग समयुग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल भवतर बिनहि प्रयास। ज्यादातर लोगों को तो ये याद आता है, जब जब हो धर्म के हानि कलयुग में, तब तब भगवान क्या करते हैं, प्रभुधर विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, ये तो याद रहता है हम लोगों को। लेकिन यह नहीं मालूम कि कलयुग की खूबी क्या है। कलयुग की खूबी है ना कि आपको विशेष साधनाएं नहीं करनी, केवल अगर आपने नाम का निरंतर स्मरण रखा, जप नहीं स्मरण, ये अंतर जरा आप लोग समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा। आज के ही दिन से आपका कायाकल्प हो जाएगा। भगवान का नाम का जप नहीं, भगवान के नाम का स्मरण। स्मरण और जप में अंतर है। अब जैसा मेरे गुरुजी हरिद्वार में जो श्रीराम शर्मा आचार्य जी, जो गायत्री यज्ञ के महान प्रवर्तक हैं, वो एक स्मरण के बारे में एक कथा बताते हैं कि स्मरण का मतलब इसको याद रखो, तुम स्मरण करना जान जाओगे। एक मां का अकेला लड़का युद्ध में चला गया लड़ने के लिए, सैनिक के रूप में, नौ महीने बीत गए, पता नहीं लड़का जिंदा है कि मर गया है, युद्ध चल रहा है। तो एक दिन तार आया कि मां युद्ध खत्म हो गया, हम लोग जीत गए, मैं आ रहा हूं। अब मां की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं, तो बच्चे के लिए नए नए कपड़े सीती रही, नए नए पकवान बनाती रही, मिठाई बनाती रही, सब बनाती रही। बच्चे के आने का दिन हो गया, तब भी इसका खाना पकाना पूरा नहीं हुआ, बच्चे को खिलाना है ढंग से। लेकिन ये खाना बनाती रही, कपड़े सीती रही, ये सब करती रही, लेकिन निरंतर उसके मन में कौन था, लेकिन बेटा बेटा जप नहीं करती थी वो। अंतर मालूम हुआ ना। इस तरह भगवान के बारे में अगर हम लोग जुड़ सकें उसके नाम से, उसके स्मरण के साथ हो जाएं, तो क्या कहते हैं, कलयुग कलयुग समयुग आन नहीं, जौनर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल भवतर बिनहि प्रयास। लेकिन हम लोग स्मरण नहीं करते हैं, स्मरण तो किसी और चीज की है, जब में मुंह में राम का होता है। जैसे कबीरदास जी ने कहा, कर में तो माला सिरे जीभ सिरे मुख माह, मनुआ तो चहुदिस सिरे, यह तो सुमेरे नुना है। तो हम लोगों की आधारभूत गलती यह है, हम जप में ज्यादा चले गए, स्मरण कम करते हैं। तो पहली बात तो आज के दिन अगर इतना भी हम लोग समझ गए कि हम लोगों को भगवान का स्मरण करना है, मतलब हम जो भी काम करें उनके लिए करते हैं। जैसे वो मां जो है कपड़ा भी सिए तो बेटे के लिए, खाना भी बनाए तो बेटे के लिए, उनको दोस्तों को फोन करें कि हमारा बेटा आने वाला है, आप सब लोग आइए, हम लोग एक महान पार्टी करेंगे, बहुत बड़ा पार्टी करेंगे, तो भी किसके लिए, तो इस तरह अगर आप अपनी जिंदगी भगवान के लिए दे सकें, इसके लिए यहां एक और दोहा हमको मिला, बिन सत्संग न हरि कथा, बिन सत्संग न हरि कथा तो ही बिन मोह न भाग। मोह जो है ना संसार के प्रति, तो मोह कहना तो बहुत आसान है भाई कि आप निरंतर भगवान का नाम लीजिए बस हो गया, ले कैसे उसको? तो उसके लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए सत्संग और दूसरा चाहिए हरि कथा। भागवत से बढ़कर हरि कथा नहीं। और भागवत में जो विधियां बताई गई हैं एक सप्ताह में उसको बताने वाले लोग और उसको सुनने वाले लोग जहां इकट्ठे होते हैं उससे बड़ा सत्संग नहीं है। सत्संग तो कई सत्संग है। तो बिन सत्संग न हरि कथा तो ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद। जब तक मोह है तब तक राम पद में हो ही न दृढ़ अनुराग। तो दृढ़ अनुराग बिना मोह के गए होगा नहीं, यही गीता में भी कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मोह गया तो स्मृति मतलब स्मरण आया, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्र सादात्मया च्युता। लेकिन ये देगा कौन हमको? ये हम अपने से तो होगा नहीं, अगर अपने से होता तो अब तक तो हो गया होता, तो कौन देगा? वो अच्युत, वो श्री कृष्ण, वे हम लोगों को जो है उसकी रुचि बताएंगे। तो उसकी रुचि कहां से आएगी? यज्ञ करने से आएगा। दो बातें बताते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में, देखते तो वो बताते हैं गायत्री छंद सामह, छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूं। दूसरा क्या कहते हैं वो, यज्ञानाम जप यज्ञ उसने, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो इस यज्ञ की प्रक्रिया और गायत्री मंत्र का संबंध, ये जब दो मिते हैं यज्ञ और गायत्री मंत्र, तो महालक्ष्मी का अवतरण होता है। इस बात को बताने के लिए मैं बता रहा था इसे, लेकिन ये सब किसके बूते बता रहा हूं आप मत भूलिए। सनातन धर्म संघ इसका आदि मूल कारण है ये बताने के लिए सब मैं बता रहा था। इसके कई पहले मैं क्या बता रहा था कि आदि मूल कारण के पहले क्या घटनाएं घटी भारतवर्ष में, कि अरबिंदो जेल में थे, वासुदेव सर्वमिति श्लोक उन्होंने देखा, उन्होंने साधना की। जब उन्होंने साधना की तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर कहे कि तुम क्यों बेकार डरते हो, तुम हो तो क्रांतिकारी, तुम चाहते हो कि भारत देश स्वतंत्र हो जाए, तो मैंने भारत देश को स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने तो भारत देश को स्वतंत्र कर दिया, अब केवल वो स्वतंत्रता तुम लोगों को पानी है। तो बड़ा आश्चर्य होता है जब हम ये सुनते हैं कैसे वो अरविंदो हैं और कैसे ये भगवान श्री कृष्ण हैं, शायद उनकी जो है गड़बड़ है। युद्ध हो रहा है स्वातंत्र संग्राम का, ये घटना घटी है 1911 में, स्वतंत्र हुआ भारत देश करीब 30 साल बाद। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा क्या? कहा मैंने तो भारत देश को स्वतंत्रता दे दी, तुमको करना क्या है? केवल खड़े रहो बस, तुम खड़े रहो, तुम लोग सब स्वतंत्रता तो दे दी। लेकिन यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, क्यों नहीं लड़ना चाहता था? क्योंकि जब वो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जब रखा गया तो सामने कौन दिख रहा था उसको? भीष्म दिख रहे थे। भीष्म कौन थे? उनके दादाजी थे। दादाजी थे ठीक थे, लेकिन उनके वो दादाजी अब लड़ने के लिए सामने आ गए। युद्ध के पहले तक अर्जुन के मन में एक विश्वास था कि हमारे दादाजी हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमसे नहीं लड़ेंगे, जब लड़ने की ही बात आएगी तो वो बगल रहेंगे, लड़ेंगे नहीं। लेकिन सामने दादाजी आ गए, और वो भी साधारण रूप में नहीं, सेनानी के रूप में, सर्व सेनाधिपति के रूप में, यानी सेना का सर्वोच्च नायक। तो कोई हारने के लिए थोड़ा ना कोई सर्वोच्च नायक बनेगा, वो तो जीतने के लिए ही आया। और सब लोगों को मालूम था उस समय कि भीष्म को इच्छा मृत्यु है, भीष्म अपने आप जब तक मरना नहीं चाहेंगे तब तक कोई उसे नहीं मार सकता। अब अर्जुन की हालत तो आप समझ लीजिए, हम उनसे क्या लड़ेगा, उसको तो मालूम था कि भीष्म वैसे मरने वाले हैं नहीं, अगर वो मरना चाहते तो लड़ने क्यों आते। तो पहला शॉट। दूसरा क्या था, द्रोण। सामने द्रोण खड़े थे, उनके गुरु। द्रोण के बारे में उस जमाने में सभी लोग कहते थे कि जब तक वो अपने आप धनुष बाण बगल में नहीं रखेंगे, यानी वो लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक कोई उनसे युद्ध नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। एक तो भीष्म, दूसरा द्रोण, तीसरा कर्ण। कर्ण कौन था? उसके पास स्वयं अर्जुन के पिता का दिया हुआ एक शक्ति था, और उस जमाने के सभी लोग जानते थे कि कर्ण वो शस्त्र को, उस बाण को केवल अर्जुन को मारने के लिए रखा हुआ था। तो वो बाण चला दिया तो खत्म अर्जुन, भीष्म को हरा नहीं सकते, द्रोण जो है धनुष बाण रखेंगे ही नहीं। इसके बाद एक और व्यक्ति सामने दिख रहा था, जयद्रथ। उसको भगवान शिव के वरदान प्राप्त था। वो ये था कि युद्ध में एक दिन वो अर्जुन के अलावा सभी पांडवों को हरा देगा। अब उनसे क्या जीतेंगे ये लोग, असंभव। उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो गया, मैं भाग जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने तो उनको मार दिया, वो तो केवल खड़े हुए हैं वहां। निमित्त मात्रम भवसव्य साचि, तू केवल निमित्त बन, वो तो मर चुके हैं, मेरे द्वारा कब का मैंने उनको मार दिया। कुछ इस तरह की बातें हैं, ऐसी ही बातें जेल में श्री कृष्ण ने अरविंद से कि मैंने तो भारत देश को स्वतंत्र कर दिया, अब केवल इन लोगों को नाम कमाना है। सोचो नाम कमा लिया लोगों ने, इनके वजह से, इनके वजह से, इनके वजह से जो है स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन सनातन धर्म संघ की बात मैं इसलिए उठाया कि ये सब बात तो जेल में हुआ, फिर एक चमत्कार घटा। अरविंदो के साथ जिनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला उन ग्यारहों को फांसी हो गई, अरविंदो को नहीं हुआ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, असंभव। तो ये बाहर आए तो बड़े उत्साह से आए कि अब तो हम मोर्चा लेंगे, अब तो मैं भिड़ गया, किससे, विदेशियों से मैं लड़ूंगा। तो कोई उसकी आवाज नहीं सुना। एक साल ये अंदर जेल में थे, लोगों की गर्मी खत्म, ये बाहर निकले तो कोई इनकी बात ही नहीं सुन रहा था। तब जो है ये जो मैंने आपको घटनाएं सुनाई, ये घटनाएं सुनाने के लिए उस समय कलकत्ता में जो सनातन धर्म संघ था उन्होंने इनको मौका दिया। अगर वो मौका ना मिला होता तो आज हम लोग अरविंदो के बारे में और श्री कृष्ण के बारे में ये सब बातें ना मिली। तो उस सनातन धर्म संघ का शायद यह भी एक सनातन धर्म भवन है। इसलिए मैं कह रहा था कि वो नाम के बारे में यह स्मरण, सनातन धर्म नाम देखा इतना स्मरण आ गया है ना। तो भगवान का नाम लिया तो उस एक एक नाम के पीछे उनकी अनोखी लीलाओं का स्मरण आना चाहिए हम लोगों को, तब स्मरण हुआ वो। ये नहीं कि हमने राम राम कह दिया, श्री कृष्ण कह दिया और टीवी देखते रहे बगल वालों से। तो रामकृष्ण परमहंस का जो है घटना याद रखें, भगवान का नाम उनके कान में पड़ा और वो समाधि में चले जाते। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लोग सब समाधि में चले जाएं, मेरा ये उद्देश्य नहीं, केवल हम लोगों का विश्वास जो है श्रद्धा में बदलना है। तो इस श्रद्धा में बदलने का एक सबसे सुलभ तरीका यह है कि आप अग्नि का उपयोग कीजिए, यज्ञ का उपयोग कीजिए। तो इस यज्ञ का उपयोग में भागवत कथा का बहुत प्रमुख स्थान है। भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, यहां पे 12 ईंटें हैं। तो जब जब आप ये यज्ञ कुंड सजाएंगे, एक एक ईंट रखेंगे ना, एक नीचे ईंट ऊपर, तो क्या होना चाहिए, आपके मन में श्री कृष्ण लीलाओं का वो 12 स्कंदों के बारे में याद आनी चाहिए। पहला ईंट रखा भागवत का पहला स्कंद, दूसरा ईंट रखा भागवत का दूसरा स्कंद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नीचे का पूरा हो गया। उसके बाद ऊपर का छह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। ये दसवां बहुत बहुत प्रमुख स्कंद है, क्योंकि वहां श्री कृष्ण का जन्म होता है। भागवत सप्ताह जब हम लोग करते हैं तो उसके पूर्णाहुति में उन 1800 श्लोकों का जो दसवें स्कंद में उसकी आहुति देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन भागवत में तो साला बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भी आप भागवत सप्ताह करें तो भागवत सप्ताह का अंत एक महायज्ञ से हो। उस यज्ञ में भागवत के दसवें स्कंद के 1800 श्लोकों से आहुति पड़े। तो इस समय उतना समय कहां है लोगों के पास, है ना? अगर समय भी हो तो जिस तरह के मकानों में हम लोग रह रहे हैं, तो वहां अगर आप अग्नि जलाया और धुआं हुआ तो फ्लैट में, तो हम लोग फ्लैट हो जाएंगे, तो क्या करना है? तो यज्ञ का मतलब क्या हुआ कि नीचे जो है पृथ्वी का कुंड बने, उसमें अग्नि जले संविधाओं से, और उसमें जो है सुगंधित द्रव्यों का आहुति हो। तो क्या इसका प्रत्यामनाय किया गया कि 12 तो ईंट लगा दिए, लेकिन जब भी ये 12 ईंट हम लोग लगाते हैं तो मन में हम लोग के उस श्री कृष्ण लीलाओं का जो है सुंदर दृश्य स्मरण आने चाहिए। आएंगे वो, जब हम लोग राम कहें तो रावण का वध भी याद आता है, सीता कल्याण भी आता है, धनुष भंग भी याद आता है। आप याद करना चाहे ना करें वो याद आ जाएगा। तो उसी तरह अगर आप भागवत के बारे में थोड़ा सा अध्ययन हम लोग कर सकें तो जब जब आप इस यज्ञ कुंड का जो है सही उपयोग करेंगे तो संपूर्ण भागवत आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, भागवत पढ़ने के बाद आहुति देनी है। तो 12 ईंटे जब आपने सजा दिया इसका मतलब 12 स्कंद याद आ गया आपको, यानी भागवत का याद आ गया ना। अब क्या करना है, यज्ञ करना है। तो यज्ञ में क्या होता है, अग्नि रहती है और उसमें सुगंधित द्रव्य हम लोग डालते हैं तो सुगंधित वातावरण हो जाता है। तो हमने 5 दीपक जला दिया, अग्नि आ गया, 5 अगरबत्ती जला दिया, सुगंधित वातावरण हो गया। तो पूरा वातावरण क्या हो गया, यज्ञमय वातावरण हो गया। तो उसमें आहुति अब डालनी है हम लोगों को। तो 1800 श्लोकों का दसवें अध्याय भागवत का, दसवें स्कंद भागवत का अगर आपको करना चाहें तो सुबह शुरू करेंगे तो दोपहर को 2:30 बज जाएगा। तो उसके बदले में कहते हैं ना कि कभी काम निकालना हो तो ऑफिसर से ज्यादा किसके पास जाने से जल्दी काम हो जाता है, ऑफिसर के पत्नी के पास चले गए तो ज्यादा जल्दी काम हो जाता है। तो भागवत में श्री कृष्ण के अनुग्रह वर्षा अगर हम लेना चाहें तो किसको पकड़ने से आसानी हो जाएगी, पकड़ो महालक्ष्मी को, है ना। तो वहां पे आपको 2-2.5 घंटे नहीं लगाने हैं, वहां केवल आप 5 माला महालक्ष्मी का जप दीजिए। उस 5 मालाओं में एक माला गायत्री का कर दीजिए, क्योंकि गायत्री श्री कृष्ण का ही पितृरूप है, उन्होंने खुद कहा है कि छंदों में मैं गायत्री हूं। तो एक माला गायत्री आप जप लीजिए, 4 माला महालक्ष्मी जप लीजिए। तो हो गया कि नहीं भागवत सप्ताह का पूरा एक छोटा संस्करण। लेकिन जब यह रोज आप करेंगे, रोज जब आप करेंगे तो क्या हो रहा है, भागवत सप्ताह नहीं हो रहा आपका, दैनिक भागवत हो रहा है। तो वो स्मरण करने में, अनन्य साधना करने में कितना सुविधा हो जाएगी। तो ये टेक्निक बताने के लिए मैं आप लोगों के पास आया। इसके बाद प्रदक्षिणा एक काम है जिसे हम लोग भूल गए हैं, यानी कानी के पापा ने 8:15 बजे, या ठीक है कुछ और बता सकता हूं मैं, या अभी रोक देता हूं, आपकी मर्जी, अगर 15 मिनट और ठीक। तो हमने 12 इंच सजा दिया, भागवत कथा याद आ गई, 5 दीपक जला दिया, 5 अगरबत्ती जला दिया, हवन की क्या कहते हैं उसको बैकग्राउंड हमने तैयार कर दिया। अब श्री कृष्ण की याद में गायत्री मंत्र जप दिया, और श्री कृष्ण के अनुग्रह के लिए किसको पकड़े हम लोगों ने, राधा जी को पकड़े, महालक्ष्मी या राधा एक ही बात है, एक नाम के अंतर है। तो इस तरह जब आप करते करते चले जाएं, यज्ञ पूरा हो गया, जब पूरा कर दिया आपको प्रदक्षिणाएं करनी है। ये प्रदक्षिणा के बारे में जरा आप याद करिए, ये प्रदक्षिणा करता क्या है? प्रदक्षिणा मतलब क्या हुआ? जहां से आप चले फिर वहीं आना है, जहां से आप चले फिर वहीं आए, तो वो हुआ प्रदक्षिणा। अगर हम लोग अपने समाज को देखें तो जो समाज के जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि समाज का ये जो आधुनिक विशाल भव्य रूप है दो चीजों पर आधारित है, एक आग के ऊपर, दूसरा चक्र के ऊपर, व्हील है ना। आग के बिना जब तक आग की खोज नहीं हुई आदमी जंगल में ही था, जब आग खोजा, आग के साथ कई कई चीजें खोजते खोजते आज इतने ऊंचे सामाजिक वातावरण में पहुंच गया। तो दूसरा क्या है? व्हील, चक्र। चक्र क्या करता है आप जरा देखिए, वो एक ही जगह चक्र काटता है, यहां से चला फिर वहीं पहुंचा, यहां से चला फिर वहीं पहुंचा। तो चक्र क्या कर रहा है? प्रदक्षिणा कर रहा है ना। लेकिन यह तो कर रहा प्रदक्षिणा, लेकिन आप कहां जा रहे हैं? आप लक्ष्य के पास चले जा रहे हैं, है कि नहीं? यहां से हम स्कूटर पे चढ़े, स्कूटर घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? जहां से चला जो चक्र, नीचे आया फिर ऊपर आया, नीचे आया फिर ऊपर आया, वो तो प्रदक्षिणा कर रहा है। लेकिन इस प्रदक्षिणा जो करवा रहा है ना, जो उसके ऊपर बैठा है, वो कहां पहुंच रहा है? लक्ष्य के पास पहुंच रहा, मंजिल के पास। इसी तरह यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा आप करें तो आप अपने मंजिल के पास पहुंच जाएंगे प्रदक्षिणा से, यह बात हम लोग भूल गए। यहां देख रहे हैं हम लोग, स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं, रेल में बैठे हैं तो रेल की पहिया क्या कर रहा है? प्रदक्षिणा कर रहा है। आप कहां पहुंच रहे हैं? लक्ष्य में पहुंच। हवाई जहाज उड़ने के पहले तो उसके भी तो पहिए हैं ना, वहां भी जो है प्रदक्षिणा ही है। तो इस सनातन धर्म की इस महान अनोखी देन को हम लोग भूल गए, प्रदक्षिणा को हम लोग भूल गए। यानी कानी च पापानि ज्ञातक ज्ञातक कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणायाम पदे पदे। तुम्हारे सारे पाप जो हो, चाहे जानकर किए गए हो चाहे अनजाने में किए गए, वो निश्चित रूप से प्रदक्षिणा के एक एक पद से नाश हो जाएंगे। तो यज्ञ के बाद प्रदक्षिणा कीजिए। लेकिन घर में प्रदक्षिणा उससे छोटे से जगह में तो संभव नहीं है, करेंगे भी तो आप क्या करेंगे? इसलिए प्रदक्षिणा करने के लिए आपको एक देवालय चुनना होगा, किसी भी देवालय में चले जाइए। और प्रदक्षिणा के दो नियम याद रखें। क्यों वो दो नियम याद रखने हैं और क्यों वैसे ही करने हैं, अगर संभव हो सका तो मैं कल बताऊंगा। वो ये है कि कम से कम आपको 112 प्रदक्षिणाएं करनी है, उससे कम में आपको प्रदक्षिणा का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। 112 मतलब 100/100, तीन प्रदक्षिणा किया मतलब 3/112, तो उतना फल समझ में आया ना। तो आपको प्रदक्षिणाएं कम से कम 112 करनी है, और ज्यादा लाभ उठाना हो तो कम से कम 2 घंटे करनी है। तो मैं लोगों से कहता हूं, खास तौर से जो दिल के रोगी हैं, जो डायबिटीज के रोगी हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं तुम चलो पैदल चलो। तो भैया तू देवालय का प्रदक्षिणा करना 2 घंटे, 2 लाभ हो जाएंगे तुम्हारे। एक तो 2 घंटे का वॉकिंग हो गया तुम्हारा, और दूसरा जो है, जो तुम्हारा लक्ष्य है वो लक्ष्य को तुम पालोगे। हम लोगों का क्या लक्ष्य होता है? देवालय क्यों जाते हैं? भगवान को कुछ मांगने जाते हैं। तो तुम जो भी मांगो अगर 2 घंटे प्रदक्षिणा कर लिया तो लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। जैसे मैंने अभी कहा ना कि स्कूटर पे बैठा प्रदक्षिणा किया, अगर आपको 2 मील दूर जाना है तो कुछ प्रदक्षिणाएं करेगी चक्र, और 4 मील जाना हो तो इसका दुगना प्रदक्षिणा करनी होगी। तो जितना तुम्हारा लक्ष्य है उसके अनुरूप अगर तुमने प्रदक्षिणाएं करना शुरू कर दी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बड़े विचित्र लोग हैं हम लोग कि ऋषियों की बात पे विश्वास तो करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं करते। श्रद्धा मतलब आचरण। हम लोग मान लेते हैं कि ठीक कहा है ऋषि ने, यानि कानि च पापानि ज्ञातक ज्ञातक कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिण, करो तब ना। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, यहां पे महालक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जितने लोग हों प्रदक्षिणाएं करें, रात दिन प्रदक्षिणाएं करें। क्यों रात दिन प्रदक्षिणाएं करें? यहां एक हवन कुंड की प्रदक्षिणा होगी घर में अगर आप करें तो। यहां कितने हवन कुंड है? 1000 हवन कुंड की स्थल है। तो 1000 हवन कुंड स्थल की प्रदक्षिणा करने का अवसर आपको बार बार नहीं आएगा। अगर ऋषियों की इस बात पर विश्वास हो तो आपको क्या करना चाहिए? इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाया तो श्रद्धा है, लाभ नहीं उठाया तो आपको विश्वास है लेकिन श्रद्धा नहीं है। और हम लोग क्या करें क्या ना करें? कल यहां मीटिंग है, यहां पे नहीं है तो जहां मीटिंग है वहां बता दें तो वहां मैं बताऊंगा, लेकिन जगह पास में है। समझाने से जितना भी समझाया गया बात समझ में आ गया है तो फिर कीजिए। क्या करना है? प्रदक्षिणाएं करनी और इस तरह के 12 इंच 5 दीपक 5 अगरबत्तियां रोज घर में स्थापित करें। रोज आपके घर में भागवत कथा हो रही है यह विश्वास रखें। तो आप कहेंगे भागवत कथा तो 1 सप्ताह करना है, यहां तो 5 मिनट में हो जाएगा। तो मैं उदाहरण देता हूं। एक लड़का परीक्षा देने जाता है, गणित का पर्चा है, परीक्षा देने गया, पेपर देखा, पेपर देखते ही उसको समझ में आ जाएगा कि वो कितने प्रश्न हल कर सकता है कि नहीं। बाकी 3 घंटे वो क्या करेगा? जो वो जानता है उसका एक स्वरूप देगा, है कि नहीं। तो वो पर्चा देखने के बाद ही उसको समझ में आ गया कि वो कितने प्रश्न हल कर सकता है कितने प्रश्न हल नहीं कर सकता है ना। इसी तरह ये यज्ञ आप जब भी करेंगे तो आपको संपूर्ण भागवत की याद आएगी, यज्ञ प्रक्रिया की याद आएगी, परिक्रमा की विधान की याद आएगी। और उस याद को आप जितने श्रद्धा पूर्वक हर रोज करते रहेंगे उतने फायदे में रहेंगे। निश्चित रूप से आप और आपके जितने साथी हैं उन सबको बताइए कि 30 तारीख को सुबह 9 बजे से यज्ञ शुरू होगा। उसके पहले कम से कम 112 प्रदक्षिणाएं कर लीजिए आप, या 2 घंटे प्रदक्षिणाएं कर लीजिए, यज्ञ का पूरा फल मिलेगा आपको। नहीं करेंगे तो पार्शल फल मिलेगा। भूख ज्यादा लगेगी तो खाना बढ़िया खाना ज्यादा खा सकते हैं, अगर भूख नहीं है तो खा तो लोगे मजा नहीं आएगा। तो जब तक 112 बार प्रदक्षिणा ना कर लें या 2 घंटा प्रदक्षिणा ना कर लें तब तक यज्ञ का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा, इसको मन में रखें। ठीक, जय श्री कृष्ण।